हरे कृष्ण। तो उसका शब्दार्थ आप लोग मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, यावन्तः यथा संभव विषया इंद्रिय भोग के विषय प्रेष्टा हर एक के लिए प्रिय त्रिलोक्या तीनों लोकों में अजित इंद्रियम जिसकी इंद्रियां वश में न हो न शक्नुवंती असमर्थ हैं ते वे सर्वे सभी मिलाकर प्रतिपूरितुम संतुष्ट करने के लिए नृप हे राजन। तो उसका अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। तो उसका अनुवाद आप लोग मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान ने कहा, हे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी है उससे भी संतोष नहीं हो सकता। तात्पर्य, भौतिक जगत वह माया है जो जीवों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करती है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतएव जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें योग या अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने का उद्देश्य जन्म मरण के चक्र में पड़ने से रोकना है, जैसा कि ऋषभ देव ने कहा है, नूनम प्रमतः कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यद आत्मनोयम असन अपि क्लेशद आसदेह। जो कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक जीवन के पीछे उन्मत्त हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। वह यह नहीं जानता कि विगत दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है जो क्षणिक होते हुए भी उसके दुख का कारण है। वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उसे यह शरीर दिया गया है। अतएव मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में संलग्न हो जिनसे वह लगातार भौतिक शरीर प्राप्त करता रहता है। इस तरह ऋषभ देव के अनुसार इस भौतिक जगत के सारे मनुष्य पागलों की तरह उन कार्यों में लगे रहते हैं जिन्हें उनको नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें वे मात्र इंद्र तृप्ति के लिए संपन्न करते हैं ऐसे कार्य उत्तम नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें अगले जीवन में अपने दुष्कर्मों के दंड स्वरूप पुनः शरीर प्राप्त होता है। पुनः शरीर प्राप्त होने पर उसे संसार में फिर से कष्ट भोगना पड़ता है। अतः वैदिक या ब्राह्मण संस्कृति सिखाती है कि किस प्रकार जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहा जाए। इस सर्वोच्च संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति की गई है। वर्णाश्रम विभागों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचार्य ग्रस्त वानप्रस्थ तथा संन्यास का उद्देश्य इंद्रियों को वश में करने और कम से कम वस्तुओं से संतुष्ट रहने की शिक्षा देना है। आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन देव ने बलि महाराज की इस भेंट को ठुकराते हुए कि वे जो चाहें सो मांग ले, वे कहते हैं कि संतोष के बिना कभी कोई सुखी नहीं रह सकता, भले ही उसे सारे जगत या सारे ब्रह्मांड की संपत्ति क्यों न प्राप्त हो। अतः मानव समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य संस्कृतियों का पालन होना चाहिए और लोगों को उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितने की उन्हें आवश्यकता है। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक दुखी है और अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट तथा दुखी है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका में विविध कृषि क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है जिससे सुखी बनने और न्यूनतम आवश्यकताओं में संतुष्ट रहने पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करके आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचाने की विधि ज्ञात हो सके। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज जो है भगवान वामन जी का आविर्भाव दिवस है। भगवान वामन का जन्म हुआ भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को और समय था मध्याह्न का, लगभग दिन के 12 बजे के आसपास। और इनके पिता थे कश्यप मुनि और इनकी माता थी अदिति। और भगवान वामन अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए और उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर था। तो इस प्रकार भगवान वामन प्रकट हुए चार भुजाओं में शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए। और भगवान वामन उस समय जो है बहुत दिव्य रूप से प्रकट हुए। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। चौथा अध्याय 9वां श्लोक। भगवान ने गीता में तो सिद्धांतिक रूप से ये स्थापित किया कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, लेकिन ये कैसे दिव्य है ये पता चलता है श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण के दिव्य अवतारों की चर्चा हुई है और लगभग श्री कृष्ण के समस्त अवतारों की 22 अवतारों की चर्चा जो है भागवतम में की गई मुख्य रूप से। तो उन्हीं में से एक अवतार है भगवान वामन। आपको पता है भगवान वामन कौन से अवतार हैं? योग अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, कौन से अवतार में आते हैं ये? भगवान वामन जो हैं योग अवतार, ये भगवान वामन मनवंतर अवतार भी हैं और प्लस लीला अवतार भी हैं। इस प्रकार से दो श्रेणियों में इनकी गिनती होती है। और भगवान ने गीता में भी भगवान वामन के बारे में बताया है, आदित्यानाम अहम विष्णु, मैं आदित्यों में विष्णु हूं। तो यहां जो गीता में विष्णु की बात की श्री कृष्ण ने, तो ये वामन ही है। भगवान वामन का एक नाम आदित्य है क्योंकि वो अदिति के पुत्र हैं, एक नाम उरुक्रम है क्योंकि उन्होंने दो पगों से ही सब कुछ नाप लिया और बहुत छोटे थे, लगभग 52 अंगूठों जितने थे, इसलिए उनका एक नाम है वामन, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। ये जितना हमारा अंगूठा है तो ऐसे 52 अंगूठे जितने भगवान वामन थे। और उनके और भी कई नाम प्रसिद्ध हैं, उरुक्रम, आदित्य, वामन, है ना, ये उनके प्रसिद्ध नाम हैं। तो भगवान वामन प्रकट हुए देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। पदत्रयम् याचमानम्, भागवत में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, तीन पगों की याचना की बलि महाराज से। जब भगवान वामन प्रकट हुए, सारे देवी देवताओं ने उनको उपहार दिया, ये सब भागवतम में आया है, और सबने कोई न कोई भेंट उनको समर्पित की। तो इन सब उपहारों भेंटों को लेकर बहुत सुंदर भगवान वामन, छोटे से ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी की वेशभूषा थी, और ये गए उस जगह जहां पे बलि महाराज जी क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। उनका कौन सा यज्ञ चल रहा था? ये 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। तो वहां पे भगवान वामन पहुंचे तो बलि महाराज ने उनका स्वागत किया कि आपका स्वागत है, क्योंकि बलि महाराज हालांकि दैत्य थे लेकिन फिर भी ये ब्राह्मणों का स्वागत करते थे, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे। तो बलि महाराज ने स्वागत किया और कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो भगवान वामन ने सीधी डिमांड नहीं करती कि हमें ये चाहिए, भगवान ने सिखाया है कि कैसे मांगना चाहिए। सबसे पहले भगवान ने बहुत सम्मान किया, जिससे मांगना हो तो पहले उसका सम्मान करो, उसे पूरा ऊपर चढ़ा दो, है ना, कि आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं, आपके जैसा व्यक्ति तो आपके कुल में हुआ ही नहीं कोई, आप इतने बड़े दानी हैं कि आपने आज तक जिसको जो वचन दिया है कभी उससे मुकुरते नहीं हैं, पहले ही पूरा पक्का कर लिया। अरे इतने महान लोग आपके वंश में आए, हिरण्यकश्यपु जैसे महान लोग आपके वंश में आए, है ना, हिरण्याक्ष जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया आपके यहां, भगवान ने सम्मान किया सबका, ये कोई साधारण लोग थोड़ी थे, ये तो बड़े महान लोग थे। हालांकि भगवान ने वणा भगवान ने हिरण्याक्ष को मार जरूर दिया, लेकिन आज तक भगवान वणा सोच रहे हैं अपने धाम में कि किसी वीर से पाला पड़ा था। तो मतलब बहुत सम्मान किया भगवान वामन ने। हालांकि भगवान वणा ने तो हिरण्याक्ष को बड़ी आसानी से मार दिया, भागवत में लिखा हुआ है करेण कर्ण मूल हन वज्र सारम अधोक्षज, एक कान पे लगाया और उससे उसकी मृत्यु हो गई, है ना। भगवान ने कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया, पहले युद्ध किया काफी देर तक, बाद में कान पे लगाया उससे वो मर गया। भागवत में लिखा हुआ है करेण कर्ण मूल हन, तो बहुत महान वीर थे, भगवान ने इस प्रकार से सम्मान किया। और फिर हिरण्याकश्यपु के बारे में कहा कि हिरण्याकश्यपु भी इतना महान था कि स्वयं भगवान भी उसके डर से भागने लगे। और भगवान ने सोचा कि मैं जहां भी जाऊंगा ये मुझे पकड़ लेगा, तो मैं कहां छिपूं। तो भगवान ने क्या विचार किया कि ये बहिर्मुख व्यक्ति है, ये बाहर देखता है, अगर मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं तो ये मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। तो भगवान विष्णु हिरण्याकश्यपु के हृदय में प्रवेश कर गए। देखिए इतने महान लोग आपके वंश में पैदा हुए हैं, फिर विरोचन महाराज इतने महान थे कि उन्होंने देवताओं के लिए अपने शरीर को भी दे दिया, फिर प्रहलाद महाराज इतने महान हैं, तो एक से बढ़कर एक महान पुरुष हुए हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो कंजूस हो अथवा जो किसी ब्राह्मण को वचन देकर फिर बाद में मना कर दे। पूरा भगवान ने सेट कर दिया, है ना। जब एकदम बलि महाराज सेट हो गए तो तब भगवान वामन ने डिमांड की कि हमें क्या चाहिए, कि महाराज अपने पैरों के हिसाब से, जितने मेरे पैर हैं इसके हिसाब से आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। तो बलि महाराज ने कहा देखिए आप हमारे पास आए हैं तो इतना मांग लीजिए कि आज के बाद फिर कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। ये क्या 3 पग भूमि मांग रहे हो, सही बात है कि नहीं। जैसे किसी करोड़पति अरबपति के पास जाओ और उससे जाके कहो कि हमें 500 रुपए दे दे, तो उसका भी अपमान कर रहे हो अपना भी अपमान कर रहे हो। तो इसलिए भगवान ने जब 3 पग की डिमांड की तो बलि महाराज ने कहा कि नहीं नहीं ये क्या 3 पग में आएगा, इतना मांगो कि फिर मांगना ना पड़े। तो भगवान वामन ने कहा नहीं नहीं हम तो संतोषी ब्राह्मण है जी, हम तो 3 पग में ही संतुष्ट होने वाले हैं, हमें 3 पग दे दीजिए। तो बलि महाराज ने कहा कि आप बालक हो और आपके वचन भी बालकों जैसे हैं, आपको ये पता नहीं है कि आप किसके पास आए हो, आप मेरे पास आए हो, और जो एक बार मेरे पास आता है तो फिर उसे और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, तो इतना मांग लो कि फिर कभी मांगना न पड़े। तुम इतने छोटे हो और 3 पगों में कितनी भूमि आएगी, अरे 3 पगों में तो इतनी भूमि भी नहीं आ पाएगी जितने में तुम लेट सको। तो तब भगवान वामन ने प्रवचन किया, है ना, बहुत अच्छा प्रवचन किया, लेकिन काम सब गड़बड़ किया बाद में, लेकिन प्रवचन बड़ा अच्छा है ना, बाद में सब गड़बड़ कर देंगे, है ना, लेकिन प्रवचन बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं भगवान, श्री भगवान वाच यावंतः विषया प्रेष्टः। श्री भगवान ने कहा हे नृप हे राजन, जितने भी विषय हैं, प्रेष्ट विषय, प्रेष्ट का मतलब होता है प्रिय विषय, प्रेष्ठा ये बहुवचन का शब्द है, यावंतः ये भी बहुवचन का शब्द है, कि जितने भी विषय हैं, विषया, यहां पे एक दो विषय की बात नहीं की गई, जितने भी विषय हैं और कहां पर किस जगत में, त्रिलोक्याम 3 लोकों में जितने विषय हैं, अगर ये सारे के सारे विषय भी एक व्यक्ति को दे दिए जाएं भोगने के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति को, तीनों लोकों के सारे विषय यानी तीनों लोकों की सारा धन अगर एक व्यक्ति को दे दिया जाए, तीनों लोकों की सारी स्त्रियां अगर एक पुरुष को भोगने के लिए दे दी जाएं, तीनों लोकों का जितना अनाज है अगर ये एक व्यक्ति को दे दिया जाए, तीनों लोकों का जितना सोना है अगर ये एक व्यक्ति को दे दिया जाए, तो इन सब को प्राप्त करके भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। न शक्नुवंती ते सर्वे, ते यानी कि वे विषय, वे सारे के सारे विषय, ते सर्वे न शक्नुवंती, वे समर्थ नहीं है। किसमें समर्थ नहीं है? प्रतिपूर्यतुम नृपा, एक भी व्यक्ति को तृप्त करने में समर्थ नहीं है, एक व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर वो व्यक्ति अजितेंद्रियम, उसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता और वो अजितेंद्रिय व्यक्ति है, जितेंद्रिय व्यक्ति नहीं है, तो फिर तो सारा कुछ मिलने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता, संतोषी नहीं बन सकता, संतुष्ट नहीं रह सकता। तो हम तीन पगों में संतुष्ट रहने वाले हैं महाराज, हमें आप तीन पग भूमि दीजिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। मतलब ब्राह्मण भी कभी संतोषी हो सकते हैं, है ना? तो क्या कह रहे हैं कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें तीन पग भूमि चाहिए बस, हमें और ज्यादा लालच नहीं है, हम लालची ब्राह्मण नहीं है। तो इस प्रकार से जो है भगवान वामन कह रहे हैं, यत् पृथ्व्याम वीरी हिरण्यम यवह पशव स्त्रिय न अलम एकस्य पर्याप्तम न। भागवत कहता है कि इस पृथ्वी में जितना धन है, जितना सोना है, अथवा जितनी स्त्रियां हैं, जितने पशु हैं, जितना अनाज है, ये एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है, एक व्यक्ति के लिए भी, क्योंकि एक व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं हो सकता। वही बात भगवान यहां पे कह रहे हैं, यावंत विषया प्रेष्टा। कई बार लोग कहते हैं कि जो है ना, आप भोग करते रहो, भोग करते करते आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा, लेकिन ये गलत बात है। भोग करने से कभी वैराग्य नहीं आता, है ना? भोग से समाधि की ओर, ऐसे सिद्धांत निकाल दिए, लेकिन भोगों से कभी वैराग्य नहीं आता। उल्टा कोई व्यक्ति जितना भोग करेगा, जितने विषयों को स्वीकार करेगा, उसकी आसक्ति, उसकी रुचि, वो और ज्यादा जो है उसमें क्या हो जाएगा, आसक्त होता जाएगा, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। वैराग्य भोगों से नहीं आता, वैराग्य भक्ति से आता है। इसलिए भागवत के शुरुआत में ये बात कह दी गई, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयद हेतुकम, कि जो श्री कृष्ण की भक्ति है, ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक है, वो बहुत जल्दी ज्ञान और वैराग्य को क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है। बिना भक्ति के वैराग्य नहीं आता और ना ज्ञान आता है, तो तृप्ति हो ही नहीं सकती, किसी की भी तृप्ति नहीं हो सकती, है ना? भगवान वामन कह रहे हैं कि कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, एक व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर भगवान वामन ने आगे कहा, त्रिभीर क्रमेर संतुष्टो द्वीपे नापि पूर्यते नौ वर्ष सब समेते न सप्त दीप वरेक्षया। आठवां स्कन 19वां अध्याय 22वां श्लोक, त्रिभीर क्रमेर संतुष्टो, अगर मैं तीन पैरों से संतुष्ट रहा, तीन पगों से, तो द्वीपे नापि पूर्यते, फिर तो अगर एक द्वीप भी दे दोगे तब भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, और जब मैं एक द्वीप से संतुष्ट नहीं हुआ तो सप्त दीप वरेक्षया, फिर सातों दीपों से युक्त पूरी पृथ्वी को प्राप्त करना चाहूंगा, और जब सातों दीपों से युक्त पूरी पृथ्वी को प्राप्त करके भी मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा तो फिर मुझे तीनों लोकों की क्या हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी। इसलिए आवश्यकता की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई जितना मर्जी अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा सकता है। इसलिए हमें तो बस आप तीन पग भूमि दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेट नहीं पाएंगे, बैठ तो पाएंगे, है ना। तीन पग से ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ तीन पग चाहिए हमें। और फिर भगवान ने कहा श्री श्री राधा रास बिहारी जी की कि जो ब्राह्मण अपने आप से प्राप्त होने में संतुष्ट होता है, यद्रशा लाभ संतुष्टो तेजो विप्रस्य वर्धते, उस ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। जो ब्राह्मण जो है संतुष्ट होता है किस चीज से, कि अपने आप स्वतः जो प्राप्त हो गया उससे संतुष्ट रह जाए, तो उससे उसका तेज बढ़ता है। तो इसलिए हम तो तीन पगों में संतुष्ट होने वाले हैं। तो तब जो है बलि महाराज ने संकल्प लिया तीन पग भूमि देने का। उस समय हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने तीन पग भूमि लेने का संकल्प लिया। देखिए शुक्राचार्य कितने विद्वान व्यक्ति हैं, कि उन्होंने भगवान को पहचान लिया, कोई नहीं पहचान पाया। यहां तक कि बलि महाराज भगवान का भक्त था, वो भी नहीं पहचान पाए कि ये भगवान है। शुक्राचार्य ने कहा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, और ये तीन पगों की बात छोड़ो, दो पगों में ही तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, तीसरा पग देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो तब बलि महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, अगर मैं आपकी बात मानूं और ये एक ब्राह्मण नहीं ये विष्णु है, तो फिर तो ये सब कुछ विष्णु का ही है पहले से ही, तो फिर विष्णु की संपत्ति विष्णु को देने में क्या दिक्कत है। ये तो इनकी महानता है कि हमसे मांग रहे हैं, अगर ये हमसे छीन ले तो हम इनका क्या कर लेंगे, तो हमें इनको क्या करना चाहिए, देना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, है ना, मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है संकल्प करते हैं तीन पग भूमि देने का बलि महाराज। तो देखिए इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूं, कवि नाम उस नाम कवि, क्योंकि इतने विद्वान हैं कि भगवान को पहचान लिया कि ये विष्णु हैं, है ना। भगवान को पहचानना कोई आसान बात थोड़ी है, लेकिन शुक्राचार्य ने पहचाना। तो हुआ क्या, वो तीन पग का संकल्प लिए और फिर भगवान वामन ने नापना शुरू किया। अब जब भगवान नाप रहे हैं तो अपना इतना विस्तार कर लिया, इतना विस्तार कर लिया, है ना, कि पहले जो सूर्य और चंद्रमा थे ये भगवान के नेत्रों के सामने आ गए। फिर भगवान अपने रूप का और विस्तार करते रहे, फिर सूर्य और चंद्रमा वक्ष स्थल पे आए, और फिर इतना विस्तार कर लिया कि सूर्य चंद्रमा ये घुटनों पर आ गए। आप सोचिए कितना बड़ा भगवान का रूप होगा, गलत बात है कि नहीं है भाई? जैसे मांगने आए हो वैसे ही नापो, ये कोई बात है कि मांगने में इतने छोटे बन के आए, जब नापने की बारी आई तो इतना बड़ा कर लिया अपने आप को? ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए। जैसे मांगा है वैसे नापो, ऐसे थोड़ी होता है, है ना। छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, है कि नहीं है? इसलिए जयदेव कवि ने लिखा बलिम छल यति, बलि महाराज को क्या किया, छला। छलने का मतलब है कपट किया। लेकिन क्योंकि विषय कृष्ण है तो भगवान का कपट भी मंगलकारी है, भगवान का जो छल है वो भी हित करने वाला है। इस संसार में जब कोई कपट करता है, कोई छलता है, तो वो नुकसान करता है, वो हानि करता है, लेकिन श्री कृष्ण ऐसी वस्तु है जो सबके लिए मंगलमय है। तो श्री कृष्ण अगर किसी के साथ कपट भी करेंगे तो तब भी क्या हो जाएगा, उसका उद्धार होगा, उसका लाभ होगा। इसीलिए ये सिद्धांत है, ना वस्तु शक्तिम बुद्धिम अपेक्षते। एक सिद्धांत है शास्त्रों का कि जो वस्तु शक्ति है वो कभी किसी की बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। जिस वस्तु का जो प्रभाव है वो आपकी बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता। उस वस्तु के संपर्क में जब आप आएंगे तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी दिखाएगी। जैसे कोई अगर विष को ये समझ के पिए कि अमृत है तो क्या विष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा कि दिखाएगा? तब भी दिखाएगा, विष तब भी मारेगा, क्योंकि विष की शक्ति है ये मारना। तो कोई अमृत समझ के पिए अथवा कोई टॉनिक समझ के पिए, विष अपना कार्य करेगा, चाहे अब उसके प्रति जैसे मर्जी बुद्धि हो। इसी प्रकार से अमृत को कोई विष समझ के पिए तो अमृत विष जैसा कार्य नहीं करेगा, अमृत अपनी वस्तु का कार्य करेगा, वो अमृतत्व प्रदान करेगा। कोई आग को पकड़े कि हाँ ये तो शीतलता देगी मुझे, इस बुद्धि से पकड़े तो क्या आग शीतलता देगी? नहीं, वो ताप देगी, वो जलाएगी। तो फिर हमारे बुद्धि की वैल्यू क्या रही? जब संसारी वस्तुओं में हमारी बुद्धि की कोई अपेक्षा नहीं है तो जो संसार से परे हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके सामने हमारी बुद्धि की क्या वैल्यू है? जो कोई भी जिस किसी प्रकार से भी कैसे भी और कभी भी कृष्ण के संपर्क में आएगा तो कृष्ण शुद्ध करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे शिशुपाल को किया, दंत वक्र को किया, है ना, इन सबको शुद्ध किया, पूतना को शुद्ध कर दिया, वो भी तो कपट कर रही थी, तो कृष्ण ने भी कपट किया। वो दूध पिलाने के बहाने से विष पिलाना चाहती थी तो भगवान ने भी दूध पीने के बहाने से प्राण भी पी लिए, चलो हम प्राण भी पी लेते हैं, तो भगवान ने भी वैसा ही कपट किया। लेकिन क्योंकि ये विषय कृष्ण थे तो इस कपट ने भी पवित्र कर दिया और पूतना को वो स्थिति प्राप्त हो गई जो बड़े बड़े भक्तों को नहीं मिलती। लेबे गति धात्री उचिताम, उद्धव जी कहते हैं कि मां बना लिया अपनी, धात्री गति दे दी। तो बस श्री कृष्ण को अपना विषय बनाना चाहिए, फिर वो पवित्र करेंगे ही करेंगे। इसलिए नारद जी ने कहा, गोप्य कामात भयात कंसो द्वेशाश्चैद्यादय नृपा संबंधाद विष्णया स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभु। कि गोपियों ने कृष्ण को काम से प्राप्त किया, कंस ने भय से प्राप्त किया, शिशुपाल आदि ने द्वेष से प्राप्त किया, और वृष्णि वंशियों ने संबंध से प्राप्त किया, और पांडवों ने स्नेह से प्राप्त किया, और हमने भक्ति से प्राप्त किया। भक्त्या वयम विभो, नारद जी कहते हैं। तो कृष्ण विषय होने चाहिए बस। इसीलिए नारद जी ने कहा कि ये न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेशयत। तो जब भगवान वामन ने छल किया तो इससे बलि महाराज को कोई घाटा नहीं हुआ, उनका लाभ ही हुआ। लेकिन हाँ, छल किया, कपट किया, भगवान ने भी कपट किया, तो इतना अपना बड़ा रूप कर लिया कि एक ही पैर में, एक ही पग में भगवान ने जो है ये भीतरी आकाश नाप लिया, ये पृथ्वी आदि लोक नाप लिए, और दूसरे पग में बाहरी आकाश नाप लिया, अंतरिक्ष आदि सब नाप लिया, अब तीसरे पैर के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो तब भगवान वामन ने कहा कि बलि, तीसरा पैर कहां रखूं, है ना, तुमने वचन दिया है, और फिर जब तीसरा पैर बलि महाराज नहीं दे पाए तो भगवान वामन ने आदेश दिया अपने वाहन गरुड़ को कि इसको क्या करो, बांधो, बलि को बांधो। तो गरुड़ जी ने उनको गरुड़ पांच से बांध दिया। देखिए, एक तो दे रहे हैं उल्टा बांध रहे हैं, है ना, ये तो इंसाफ कर रहे हैं, है ना, एक तो सब कुछ दे दिया और रिजल्ट क्या है, फिर बांधना जा रहा है। इसलिए जब गोपियां श्री कृष्ण की बुराई करने पे आती थीं, तो सारा पोल पट्टी खोल के रख देती थी। अरे ये कृष्ण जो है, जब वो मथुरा चले गए थे और ब्रज में वो दुखी रहती थीं, तो गोपियां यही बोलती थीं कि श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहिए, ठीक व्यक्ति नहीं है, है ना, बहुत कपटी व्यक्ति है। हमें तो लगता है कि मथुरा नगरी जो है वो ऐसी है, वहां पे जो जाता है वो काला हो जाता है, है ना। तो श्री कृष्ण भी ऐसे ही है, है ना, उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए। अब हम जो है उनकी कथाओं को भी छोड़ देंगे, उनकी वार्ता को भी छोड़ देंगे। तो एक दूसरी सखी कहती है, नहीं सखी, ये अभी का स्वभाव थोड़ी है, ये तो पहले का स्वभाव है, पहले देख लो कौन सा अच्छा कार्य किया है। हमने सुना है कि हमारे कृष्ण ये पहले जन्म में राम थे, तब देखिए कौन सी दया थी इनके अंदर कि शुरू शुरू में ही एक स्त्री को मार दिया, तारका को मार दिया। भगवान राम ने भी शुरुआत स्त्री से की और कृष्ण ने भी शुरुआत स्त्री से की, सबसे पहले स्त्री को मारा, है ना। भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा, राम ने तारका को मारा, है ना। और फिर देखिए एक स्त्री आई थी शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, चलो शादी नहीं करनी थी, मना कर दो, इतना मतलब कठोर स्वभाव था कि नहीं हम तो नहीं करेंगे लेकिन किसी और से भी नहीं करने देंगे, उसके नाक कान काट के रख दिए सूफन खा के, है ना, हम तो नहीं करेंगे लेकिन किसी और से भी नहीं करने देंगे। अरे उससे भी पहले जाओ, हमने सुना है कि हमारे कृष्ण ये पहले वामन थे, तब कौन सी दया थी इनके अंदर, जिस बलि ने सब कुछ दिया अंत में उसी को बांध देते हैं, कोई दया व्या नहीं है इनके अंदर। तो ऐसे कृष्ण की चर्चा मत करो, छोड़ो हटाओ, कोई दूसरी बात करो, है ना, उनको वहीं रहने दो। अब सही जोड़ी जमी है, ये भी टेरे हैं और कुब्जा भी टेरी है, दोनों टेरों की सही जोड़ी जमेगी, है ना। ये भी तीन जगह से टेरे हैं, सीधे तो खड़े नहीं हो पाते, और मथुरा में कुब्जा भी टेरी है। तो इस प्रकार से गोपियां आक्षेप करती रहती थीं, है ना। तो ये उनका प्रेम था वास्तव में श्री कृष्ण के प्रति। तो कहने का भाव ये है कि भगवान वामन ने बांधा बलि महाराज को, और उस समय भगवान ने कहा कि मैं तीसरा पग कहां रखूं। तो बलि महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, जब आपने मेरी संपत्ति को दो पगों में नाप लिया तो संपत्ति से ज्यादा वैल्यू तो संपत्ति के मालिक की होती है। संपत्ति की ज्यादा कीमत है या मालिक की ज्यादा कीमत है? तो भाई ये संपत्ति अगर हमारी है तो हम मालिक हैं, तो एक पैर में हमें भी नाप लो, तीसरा पैर हमारे ऊपर रख लो। तो तब भगवान वामन ने तीसरा पैर जो है रखा बलि महाराज के ऊपर, और उस समय प्रहलाद महाराज भी वहां पे आए। बलि महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे दादाजी ने हमें एक बात सिखाई है, प्रहलाद जी ने, उन्होंने कहा ये बात, किम आत्मनो अनेन जहाति यो अंतत, किम रिक्त हारे स्वजनाख्य दस्युभि, किम जायाया संस्कृति हेतु भूतया, मर्तस्य गेहे किम यह आयुषो व्यय। बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का। बलि महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इस शरीर से क्या फायदा, किम आत्मनो अनेन, इस शरीर से क्या लाभ कि जिस शरीर के लिए हम हर कार्य करते हैं, इसको इसके लिए सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर कार्य इसी के लिए करते हैं, है ना। लोग पार्कों में जाएंगे, घूमेंगे, है ना, इसका श्रृंगार, लीपा पोती, पता नहीं कितने कितने कार्य इसके लिए करते हैं। माताएं लोग घंटों घंटों जाके ब्यूटी पार्लर में बैठी रहेंगी, किसके लिए, शरीर के लिए, है ना। लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा जिसके लिए इतना मर्जी करो, जहाती यो अंततः, जो एक दिन हमें छोड़ देगा। हम नहीं छोड़ना चाहेंगे लेकिन यही हमें छोड़ देगा, कोई शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये शरीर ही एक दिन हमें छोड़ देता है। जहाति यो अंततः, तो ऐसे शरीर से क्या फायदा। किम रिक्त हारे स्वजनाख्य दस्युभि, और ये जो स्वजन है, ये संबंधी हैं, इनसे क्या फायदा। जिनको हम अपना मानते हैं, ये हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे माता पिता, ये हमारा बच्चा है ना, इस प्रकार से कितने संबंधी मानते हैं, लेकिन भागवत कह रहा है कि ये सब के सब लुटेरे हैं, सब के सब चोर हैं, है ना। किम रिक्त हारे स्वजनाख्य दस्युभि, ये हमेशा लूटते रहते हैं हमारे धन को, हमारे पास जो समय है उसको लूटते रहते हैं ये, है ना। पत्नी कहती है कि आप तो बिल्कुल हमारे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, है ना। बच्चे अलग ये कहते हैं, इस प्रकार से सब जो है, माता पिता कहते हैं कि ये तो हमारी सेवा नहीं करता, इस प्रकार से सब चाहते हैं कि हमारे पास आए, हमारे पास आए। तो ये ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति क्या है, ये सब लूटते रहते हैं हमारे समय को, जो हमारा सबसे बड़ा धन है। तो इस प्रकार से इन सबसे कोई फायदा नहीं है, इनको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो बलि महाराज ने ये कहकर कहा कि आप अपना तीसरा पैर क्या रखिए, मेरे ऊपर रखिए। तो भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके ऊपर रखा और बलि महाराज को सुतल लोक भेज दिया और वहां का राजा बना दिया। सुतल लोक का ऐश्वर्य इंद्र के स्वर्ग से ज्यादा है और वहां पे उनके वो गेट कीपर बन गए, पहरेदार बन गए। और भगवान ने जो है फिर ये वचन भी दिया कि हे बलि, अगले मन्वंतर में तुम इंद्र बनोगे। यानी ये सातवां मन्वंतर चल रहा है और जिसके 27 चतुर्युग पूरे हो चुके हैं और 28 चतुर्युग में भी 3 युग पूरे हो चुके हैं और कलयुग के भी 5000 साल बीत चुके हैं। तो जब ये पूरा मन्वंतर खत्म हो जाएगा, यानी 71 चतुर्युग जब बीत जाएंगे, तो उसके बाद जब आठवां मन्वंतर आएगा तो उस समय बलि महाराज सुतल लोक से आएंगे और फिर उन्हें स्वर्ग में इंद्र बनाया जाएगा, अगले इंद्र बलि महाराज बनेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने वचन दिया और फिर बलि महाराज जो है गए और भगवान वामन भी उनके यहाँ पहरेदार बन गए। तो भगवान वामन ने बलि महाराज के ऊपर क्या की, कृपा की। तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान को देना चाहिए और भगवान जो है ये हमेशा कृपाई करते हैं, ये हमेशा जो है हर किसी के ऊपर कृपा करते हैं। और इनका कपट भी वास्तव में हमारे लिए क्या है, शुभ है। बाकी संतोष कभी कोई नहीं हो सकता, संतुष्टि कभी कोई नहीं, किसी को नहीं हो सकती। हमें इस श्लोक से सीखना चाहिए कि हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। जितनी आवश्यकताएं कम से कम हो सकती हैं उतनी कम से कम करो, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं है और जितनी आप जरूरतों बढ़ाते जाएंगे उतनी बढ़ती जाएंगी। और आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, किसी भी चीज को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हो सकते। ये वास्तव में इंद्रियां ऐसी प्रबल हैं कि खींचती रहती हैं। भागवत में तो बड़ी अच्छी तुलना की गई है, भव या पत्निया गेह पतिम लुलंती। भागवत कह रहा है कि जैसे किसी पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हों और सब पति को अपने पास खींचें, अपने अपने घर में खींचें, जैसे किसी की 10 पत्नियां हों और एक ने एक टांग पकड़ी, दूसरे ने दूसरी टांग, एक ने एक हाथ, दूसरे ने दूसरा हाथ, और सब कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, मेरे घर चलो। तो ऐसे ही हमारे साथ हमारी इंद्रियां करती हैं। नाक अपनी तरफ खींचती है, कान अपने विषय की तरफ खींचते हैं, नेत्र अपने विषय की तरफ खींचते हैं, जीवा अपने विषय की तरफ खींचती है ना, त्वचा स्पर्श की तरफ खींच रही है, हर इंद्रिय हर विषय की तरफ खींच रही है और एक ही साथ खींच रही है। सोचो क्या स्थिति है जीव की। इसलिए अजितेंद्रियम, अगर इंद्रियों को नहीं जीता है ना, तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के हमें संतोषी बनने का प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हमारी आवश्यकताएं हों। तो आज जीव गोस्वामी जी का भी आविर्भाव दिवस है। जीव गोस्वामी जी हमारे संप्रदाय के एक महान वैष्णव हुए हैं और ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के छोटे भाई अनुपम गोस्वामी जी के पुत्र थे, यानी रूप और सनातन के भतीजे थे। तो जीव गोस्वामी जी इतने महान वैष्णव आचार्य हुए हैं कि उनके बारे में आया है कि उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतने श्लोक लिखे हैं कि उतने श्लोक 18 पुराणों में वेद व्यास ने भी नहीं लिखे हैं, यानी वेद व्यास का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने कम से कम 5 लाख से ज्यादा श्लोक लिखे हैं जीव गोस्वामी जी ने, है ना। बहुत विद्वान, हमारे संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक आचार्य थे श्रीपाद जीव गोस्वामी जी, और सबसे बड़े विद्वान थे, और उन्होंने ही हमारे संप्रदाय के सिद्धांत को नाम दिया। क्या नाम दिया? नहीं, ये तो हमारे संप्रदाय का नाम है, हमारे संप्रदाय की जो सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को हम क्या कहते हैं? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये जो नामकरण किया है, ये हालांकि है तो महाप्रभु का, लेकिन किया है जीव गोस्वामी जी ने। तो एक समय ऐसा था कि हमारे पूरे गौड़ीय संप्रदाय में एकमात्र सबसे जो मतलब प्रमुख आचार्य थे वो जीव गोस्वामी जी थे, रूप और सनातन के बाद। तो बहुत महान वैष्णव आचार्य हैं, और कई ग्रंथ भी लिखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, और कई ग्रंथों के ऊपर टीका भी लिखी है। अकेले जीव गोस्वामी जी ने भागवत के ऊपर 3 टीकाएं लिखी हैं, क्रम संदर्भ, बृहत क्रम संदर्भ और वैष्णव तोषणी टीका। ये 3 टीकाएं जीव गोस्वामी जी ने भागवत पे लिखी हैं, है ना। और भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर भी एक टीका लिखी है, दुर्गम संगमनी टीका, है ना। और षड संदर्भ भी जीव गोस्वामी ने लिखा है, ना। गोपाल चंपू भी जीव गोस्वामी जी ने लिखा है। मतलब बहुत वैष्णव साहित्य इन्होंने लिखा, बहुत महान ग्रंथ इन्होंने लिखे। तो आज इनका आविर्भाव है, और भगवान वामन का भी आविर्भाव है। भगवान का आविर्भाव महत्वपूर्ण है, भगवान का आना महत्वपूर्ण है, और वैष्णवों का तिरोभाव महत्वपूर्ण है। वैष्णवों का जाना महत्वपूर्ण होता है तिरोभाव, क्योंकि तिरोभाव ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है आविर्भाव से? क्योंकि जब वैष्णवों का आविर्भाव होता है तो तब उनकी महिमा प्रकट नहीं होती, लेकिन जब तिरोभाव होता है तो तब पूरे जगत में उनकी महिमा प्रकट हो जाती है। इसलिए वैष्णवों का तिरोभाव ज्यादा मनाया जाता है, ज्यादा उत्साह के साथ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवान का तिरोभाव नहीं होता और न मनाया जाता है कि हाँ कृष्ण इस दिन चले गए थे, ये किसी को याद भी नहीं होगा, है ना। यहाँ राम ने इस दिन इस पृथ्वी का त्याग किया, क्योंकि भगवान का आना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान का आविर्भाव हम लोग मनाते हैं, और वैष्णवों का आविर्भाव और त्रोभाव दोनों मनाते हैं, लेकिन फिर भी त्रोभाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव है, तो हमें जीव गोस्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें कृपा करें, और जो ये हमारा महान संप्रदाय है, इतना महान संप्रदाय जिसमें हम लोग आ गए हैं, ये कोई छोटा संप्रदाय नहीं है, बहुत महान संप्रदाय है। तो इस संप्रदाय को मतलब इस संप्रदाय का कुछ रस हमें भी प्राप्त हो, जिस रस में ये हमारा संप्रदाय है वो हमें भी प्राप्त हो, हमें इस प्रकार उनसे प्रार्थना करनी चाहिए जीव गोस्वामी जी से। तो इस प्रकार से आज जीव गोस्वामी जी का भी आविर्भाव है, और वामन भगवान का भी। भगवान वामन आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीपाद जीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पे विराम देते हैं। कोई प्रश्न? प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं कि बलि महाराज ने क्या अपराध किया था कि भगवान वामन ने उनको बांध लिया। देखिए, भगवान वामन जो हैं, उन्होंने वास्तव में बलि महाराज को अगर बांधा भी है तो ये कृपा ही की है। अगर कोई ऐसा भी अपराध हो जो पूर्व जन्म में किया हो या जन्म में किया हो, अगर कहीं आया भी है, तो साथ में ये बात भी शास्त्रों में आती है कि भगवान जो है भक्तों का अपराध नहीं लेते, कृष्णेर स्वभाव भक्तेर ना लय अपराध। गौरांग महाप्रभु कहते हैं अल्प सेवा बहु करे आत्म पर्यंत प्रसाद, कि कृष्ण का स्वभाव है भक्तों का अपराध नहीं लेते और थोड़ी सेवा कोई बहुत बड़ा कर देते हैं और जब देने की बारी आती है तो अपने आप तक को दे देते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई अपराध हमने पढ़ा नहीं है कि उन्होंने कोई अपराध ऐसा किया है। और फिर भगवान ने अगर बांधा भी है तो एक कृपा ही है, उनका उद्धार ही किया है। और भगवान ने अगर उन्हें इंद्र का लोक छीना भी तो उससे भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली लोक दे दिया। सुतल लोक में इंद्र के स्वर्ग से ज्यादा वैभवता है, ज्यादा ऐश्वर्य है। तो भगवान ने कुछ भी गलत नहीं किया। और उल्टा सबसे बड़ी बात तो भगवान ने ये की कि भगवान उनके पहरेदार बन गए, चौकीदार बन गए, ये इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो भगवान ने तो हर प्रकार से बलि महाराज के ऊपर कृपा की। इससे बड़ा सम्मान किसी व्यक्ति को क्या मिलेगा कि तीनों लोकों का जो स्वामी है वो जिसके पास मांगने के लिए जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान मांगने के लिए गए। तो बलि महाराज को भगवान ने बहुत सम्मान दिया, कृपा की। तो उस प्रकार से कोई अपराध नहीं है। नहीं, गुरु अवज्ञा की बात नहीं है, क्योंकि अगर गुरु अवज्ञा होती तो उनको भगवान मिलते ही नहीं। यहां तो भगवान स्वयं चल के आ रहे हैं। ये गुरु अवज्ञा नहीं है, क्योंकि उनके गुरु ने भी अगर मना किया तो वो भगवान की शरणागति के प्रति मना कर रहे थे, है ना। और दूसरा बात ये बताया जाता है कि उनके गुरु भी बहुत महान वैष्णव थे, उनका भी भगवान की भक्ति में विश्वास था। ये भागवतम से पता चलता है, क्योंकि भगवान वामन उनको अंत में कहते हैं कि हे शुक्राचार्य, जब सब चले जाते हैं तो भगवान वामन तब उनको कहते हैं कि शुक्राचार्य अपने शिष्य के अधूरे यज्ञ को पूरा कर दो, जो उसका यज्ञ अधूरा रह गया है उसको पूरा करो। तो शुक्राचार्य ने इतनी अच्छी बात कही, इतना सुंदर श्लोक भागवतम में बोला है उन्होंने। शुक्राचार्य जी कहते हैं मंत्रतः तंत्रतः पोक्त देश काल अर्हत सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव, कि हे भगवान हे प्रभु, हम जो यज्ञ आदि करते हैं, जो मंत्र तंत्रों का उच्चारण करते हैं, इनमें जो भी कमी रहती है वो सारी कमियां पूरी हो जाती हैं आपके नाम संकीर्तन से। सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव अथवा अनुसंकीर्तनम तव। तो जब आपके नाम कीर्तन से सारी कमियां पूरी हो जाती हैं तो हे प्रभु, जिस यज्ञ में आप स्वयं आ गए तो वो यज्ञ अधूरा कैसे रह सकता है। ये बात उन्होंने कही। तो उनके जो वचन है वो भी वैष्णव वाले हैं। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य के कारण उनका नहीं हुआ ऐसे अवज्ञा। वो जो है उन्होंने, भगवान वामन ने उनको बांधा तो ये कृपा ही की वास्तव में। अगर चलो ऐसा मान भी लिया जाए कि ऐसा है तो तब भी कोई हानि नहीं हुई, कृपा ही हुई उनके ऊपर, ठीक है। हरे कृष्ण। मतलब कृपा और की, और देखने के लिए समाज में कि हमारे भक्त जो है कितने त्यागी हैं और कितने दृढ़ हैं, ये दिखाने के लिए। वो बात है, ये बात भी कह सकते हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक बात यह है कि भगवान जो है कभी अपने भक्त को कोई दंड नहीं देते, वो उनके ऊपर कृपा ही करते हैं। और अगर उसको एक दंड मान भी लिया जाए कि चलो एक दंड है, भगवान ने पनिशमेंट किया, लेकिन फिर ये देखो कि इसके पीछे वास्तव में भीतर तो कृपा ही है ना। जैसे कई बार बच्चे को सुधारने के लिए माँ थप्पड़ भी मारती है, लेकिन उस थप्पड़ मारने में भी माता का भाव क्या रहता है कि इसका कल्याण हो, इसका लाभ हो। तो तो वास्तविक भाव तो कृपा है, वास्तविक भाव तो उद्धार ही है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा था वामन अवतार, लीला अवतार, युग अवतार और मनवंतर अवतार। तो मनवंतर अवतार मतलब क्या है?
मनवंतर अवतार उसको कहते हैं, 14 मनवंतर अवतार होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। हर मनवंतर में भगवान का एक अवतार आता है जो उसी समय पे आता है, तो उसको मनवंतर अवतार कहा जाता है। जैसे कुछ अवतार होते हैं जो युग युग में आते हैं, उनका टाइम होता है कि हर युग में आएंगे, तो वो युग अवतार होते हैं। तो समय के हिसाब से जब जिस अवतार को आना होता है उसकी गणना उसमें की जाती है। तो जो युग अवतार के समय आते हैं वो युग अवतार होते हैं, है ना। जैसे भगवान ने कहा कि संभवामी युगे युगे, और कुछ ऐसे भी अवतार हैं जो मनवंतर में आते हैं तो उनको मनवंतर अवतार कहा जाता है। तो भगवान वामन मनवंतर अवतार हैं, और 14 मनवंतर अवतारों के नाम भागवतम के 8वें स्कंद में लिखे गए हैं कि अगले मनवंतर अवतार कौन से होंगे, उसके बाद कौन से होंगे। तो ये चल रहा है 7वां मनवंतर, और इसके अवतार वामन भगवान है, और साथ में वो लीला अवतार भी है। जैसे शिरोदक्षाय विष्णु जो है ये गुण अवतार भी हैं, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया है, शिरोदक्षाय विष्णु ने, ये विष्णु बन के सबका पालन करते हैं। लेकिन शिरोदक्षाय विष्णु पुरुष अवतार भी हैं, उनकी गिनती 2 में होती है। तो कई अवतारों की गिनती 2 अवतारों में होती है। इसी प्रकार शिरोदक्षाय विष्णु भी ऐसे हैं।
चैतन्य महाप्रभु कौन से अवतार में आते हैं?
चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान है, वो उस समय आए जब युग अवतार का समय था। हालांकि चैतन्य महाप्रभु युग अवतार नहीं है, वो तो अवतार ही है, स्वयं भगवान है, लेकिन उनके आने का समय वो था जब युग अवतार को आना था। तो उस समय युग अवतार महाप्रभु के भीतर प्रवेश किया। तो ये जो हरिनाम का प्रचार हुआ, महाप्रभु ने आंदोलन चलाया, तो ये स्वयं भगवान का काम नहीं है, ये तो युग अवतार का काम है। ये कार्य युग अवतार ने किया। स्वयं भगवान महाप्रभु तो आए थे, उनका भीतरी कारण था अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। 3 इच्छाएं उनकी अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए वो आए थे। तो महाप्रभु युग अवतार हैं, लेकिन नहीं भी हैं, दोनों बातें हैं, क्योंकि वो अवतारी हैं और वो उस समय आए जिस समय युग अवतार को आना था, इसीलिए युग के प्रारंभ में आए, युग धर्म की स्थापना करने के लिए। और इस युग धर्म की जो धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है, इसकी स्थापना की, ठीक है।
और कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है, तो वो मतलब वो कौन से अवतार में आता है?
वो भी युग अवतार के समय आएंगे, क्योंकि वो सत्युग के युग धर्म की स्थापना करेंगे। सारे पापियों का विनाश करके जो सत्युग का धर्म है उसकी स्थापना भगवान कल्कि करेंगे। इस प्रकार से है? 3 इच्छाएं क्या है, इसका एक श्लोक है, श्री राधा या प्रणय महिमा की दृशो वान ये बात की। पहली वांछा है भगवान की कि जो राधा रानी का प्रेम है उस प्रेम को कृष्ण जानना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण के रूप से नहीं जान पाए, ये पहली इच्छा है। दूसरी इच्छा है कि उस प्रेम के द्वारा वो मेरे जिस अनिर्वचनीय माधुर्य का आस्वादन करती हैं, वो मेरा माधुर्य कैसा है, यानी अपने रूप माधुर्य को जानना चाहते हैं, है ना। किम मदीह, मेरा वो माधुर्य कैसा है, इसको जानना चाहते हैं। और मेरे माधुर्य का आस्वादन करते हुए उन्हें जिस सुख की प्राप्ति होती है वो सुख कैसा है। सौख्यम चस्या मद अनुभवत की दृशम वेति लोभात, तो वो सुख कैसा है, यानी राधा रानी का प्रेम कैसा है और मेरा माधुर्य कैसा है, यानी कृष्ण का माधुर्य कैसा है। और तीसरा, उस माधुर्य का आस्वादन करने में जो सुख प्राप्त होता है वो सुख कैसा है। 3 इच्छाओं से इति लोभात, इन 3 लोभ से तद भाव आद्य, राधा रानी के भाव को स्वीकार किया। शची गर्भ सिंधु हरिंदु, शची माता के गर्भ रूपी सागर से चैतन्य महाप्रभु रूपी चंद्रमा का उदय हुआ। तो ये तीन इच्छाएं हैं। पहली इच्छा कौन सी है? राधा रानी का प्रेम कैसा है। दूसरी, उस प्रेम के द्वारा वो मेरे माधुर्य का आस्वादन करती है, वो माधुर्य कैसा है। तीसरा, उस माधुर्य का आस्वादन करने में जो सुख प्राप्त होता है वो सुख कैसा है। ये तीन है।
आपने जैसे बताया कि युग अवतार चैतन्य महाप्रभु के भीतर प्रवेश किया, तो इसका रेफरेंस मिल सकता है कि कहां से?
हाँ, चैतन्य चरितामृत पढ़िए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंदर जब महाप्रभु के अवतार का कारण बता रहे हैं, तो उस समय तीसरे अध्याय में अथवा चौथे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सब बातें लिखी हुई हैं। तीसरा चौथा, ये दो अध्याय पढ़िए, उसमें मिल जाएगा आपको, जहाँ पे स्पष्ट कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि ये युग अवतार थे, लेकिन युग अवतार उसके भीतर प्रवेश किए महाप्रभु के भीतर, क्योंकि महाप्रभु तो सर्व अवतारी हैं, स्वयं भगवान हैं, वो कोई अवतार की श्रेणी में नहीं है, लेकिन हाँ उनके भीतर सारे अवतार हैं। इसीलिए महाप्रभु के भीतर सारे अवतार हैं, तभी महाप्रभु ने कई अवतारों को दिखाया, कई बार कई भक्तों को नरसिंह के दर्शन कराए, है ना, कई भक्तों को राम जी के दर्शन कराए, कईयों को जो है रुक्मणी के दर्शन कराए, अलग अलग रूपों के भगवान दर्शन क्यों करा पाए, क्योंकि भगवान के भीतर सारे अवतार हैं। इसीलिए
भगवान वामन ने स्वर्ग में अवतार लिए क्या, पृथ्वी लोक में अवतार लिए?
भगवान वामन ने स्वर्ग जो है, ये भगवान वामन स्वर्ग में ही बताया जाता है इनका स्थान है ना, वो स्वर्ग में अपना स्थान बना लिए भगवान वामन, और ये बताया जाता है कि स्वर्ग लोक से, ब्रह्मा के लोक से भी ऊपर इस भौतिक जगत में वैकुंठ लोक है, भौतिक जगत के अंदर, और वहां भगवान वामन रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकट तो पृथ्वी पे हुए, लेकिन बाद में अपना स्थान स्वर्ग को बना दिया, क्योंकि जब उन्होंने वो राज्य छीना स्वर्ग का, और वो राज्य जो है उन्होंने दे दिया देवताओं को, तो फिर ये देवताओं के जो हैं सेनापति बन गए। हालांकि कार्तिक के देवताओं के सेनापति हैं, लेकिन फिर भगवान वामन भी देवताओं के सेनापति बन गए और उनके साथ रहने लगे, और उपेंद्र कहलाए इंद्र के छोटे भाई। तो भगवान वामन की पत्नियां भी हैं और स्वर्ग में जो वैकुंठ में रहती हैं, तो इस पृथ्वी पे भगवान वामन का लोक है वैकुंठ लोक, और देवता लोग वहां जा सकते हैं भगवान वामन का दर्शन करने के लिए। तो भगवान वामन का दर्शन देवताओं को नित्य सुलभ है, कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण का नहीं, वामन का। तो है, हाँ, सुतल लोक में भी हैं और प्लस वहां पे भी हैं, दोनों जगह भगवान हैं। यहां बलि महाराज की रक्षा करते हैं, यहाँ वॉचमैन ही है भगवान, वॉचमैन का ही कार्य करते हैं, है ना। लक्ष्मी जी आई थी भगवान वामन को लेने के लिए। लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, तो उन्होंने कहा भाई हमारा पति वापस करो, है ना, कब तक अपने पास रखोगे। तो उन्होंने बलि महाराज को अपना भाई बनाया लक्ष्मी जी ने, और फिर भगवान वामन जो है लक्ष्मी जी के साथ भी वापस आ गए और एक रूप से वहां पे भी रह गए, तो वहां पे भी हैं और लक्ष्मी जी के साथ भी हैं। तो भगवान वामन का जो वैकुंठ है वो उस भौतिक जगत में है, और ऐसा चक्रवर्ती पाद जी ने बताया है अपने भागवत की टीका में, और वो इसी स्वर्ग लोक ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर है, और वो भी महाप्रलय के समय नष्ट नहीं होगा, वो भगवान वामन का लोक, तो वो सुलभ है भगवान वामन का लोक, वहां देवता लोग जा सकते हैं। सुतल लोक नीचे है ना, अतल वितल तलातल महातल असातल पाताल, ये सात लोग जो हैं, तो ये नीचे हैं, तो उसमें सुतल लोग भी क्या है, नीचे हैं। हाँ, ये सब नष्ट हो जाएगा, सुतल लोग, ये सब जितने 14 भुवन हैं, 14 भुवन की बात छोड़ो, अनंत कोटि जितने ब्रह्मांड हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, तब खत्म हो जाएगा, तब तक ये हैं, जब तक ये इंद्र नहीं बन रहे हैं। नहीं, क्योंकि बलि महाराज जो हैं ये ऐश्वर्य वाले भाव में हैं, ये भगवान के भक्त तो हैं, तो हालांकि भगवान इनके गेट कीपर बने हुए, इनके वॉचमैन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बलि महाराज नित्य इनकी आरती पूजा ये सब करते रहते हैं। हाँ, क्योंकि इनका भाव ब्रज वाला नहीं है बलि महाराज का, तो ऐश्वर्य भाव में ये भगवान की उपासना वगैरह करते रहते हैं, रोज भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, रोज इनकी आरती उतारते हैं, इस प्रकार से सब कार्य रोज करते हैं, क्योंकि बलि महाराज आखिरकार भगवान के भक्त हैं, है ना, मंगला आरती वगैरह रोज करते हैं वो, इस प्रकार से। डिफरेंस है, राधा कृष्ण का माधुर्य की बात नहीं की मैंने, मैंने कृष्ण के माधुर्य की बात की, क्योंकि माधुर्य का आस्वादन होता है प्रेम से। जैसे यहां राधा रास बिहारी जी खड़े हैं, तो जितने भी भक्त हैं राधा रास बिहारी जी सबको एक जितने सुंदर नहीं लगेंगे, किसी को बहुत ज्यादा लगेंगे, किसी को थोड़े लगेंगे, किसी को बहुत थोड़े लगेंगे, हर किसी को अलग अलग सुंदर लगेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जिसका जितना प्रेम होगा राधा रास बिहारी जी से, उतने राधा रास बिहारी उसको सुंदर लगेंगे, क्योंकि प्रेम से माधुर्य का आस्वादन होता है। इसीलिए ये लिखा गया है, मम माधुर्य नित्य नव नव है, महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, स्वस्व प्रेमानुरूप भक्त आस्वाद है, अपने अपने प्रेम के अनुसार भक्त आस्वादन करते हैं। अगर आपका प्रेम 5% है तो राधा रास बिहारी जी 5% आपको सुंदर लगेंगे, है ना। इसीलिए एक विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखा भागवत की टीका में कि यस्तु यावान मात्रम भगवत प्रेमा अभ्युदंचति तस्य तावान मात्रम भगवत माधुर्यम आस्वाद्यति न तु सर्वे समानम, कि जिसका जिसके प्रति जितना प्रेम होता है वो उतना जो है भगवान का माधुर आस्वादन करता है, सब समान नहीं करते कि सब समान कर रहे हैं, नहीं। इसलिए जितना राधा रानी कृष्ण का माधुर आस्वादन कर रही है उतना कोई भी नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि राधा रानी के अंदर इतना प्रेम है। पद्यावली के अंदर रूप गोस्वामी ने लिखा है कि राधा रानी जब कृष्ण को देखती थी तो वो गर्मी के मई जून के महीने में वो पत्थर के ऊपर जब खड़ी होकर कृष्ण को देखती थी तो उन्हें इतना सुख मिलता था कि वो जो पत्थर तप रहा होता था तो वो लगता था उन्हें कि जैसे ये फूल है, मैं फूलों के ऊपर खड़ी हूं, यानी उन्हें इतने सुख की प्राप्ति होती थी, उन्हें धूप कुछ पता नहीं चलती थी क्योंकि उनके अंदर इतना प्रेम था। तो प्रेम से माधुर्य का आस्वादन होता है ना, और कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए अगर भगवान का माधुर्य आस्वादन करना है तो उसके लिए पहले प्रेम अपने अंदर लाओ। को हम कहते हैं ना, हमें प्रेम प्राप्त करना है जी, प्रेम प्राप्त करना है हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। अरे किस लिए प्रेम प्राप्त करना है, क्या उद्देश्य है? तो भगवान का माधुर्य आस्वादन करने के लिए। माधुर्य भगवत्ता सार, भगवान का भी जो सार है, भगवान का भी जो निचोर है, वो है माधुर्य भगवान का। और ब्रजे कैल परचार, और इस माधुर्य का प्रचार भगवान ने ब्रज में किया। तहां शुक व्यासेर नंदन, तो उस माधुर्य का वर्णन व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने किया है। श्रीमद् भागवतम में जगह जगह श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन है, माधुर्य का वर्णन है। तो माधुर्य का आस्वादन प्रेम से होगा, और फिर उस माधुर्य को आस्वादन करते हुए, यानी कृष्ण के रूप को देखते हुए नेत्रों से जो आनंद प्राप्त होता है, जो सुख मिलता है, वो सुख एक अलग चीज है। ठीक है, जैसे हम किसी को देखें, किसी सुंदर व्यक्ति को, तो उसको देखना एक अलग चीज हो गया, और उसको देखने से हमें जो सुख प्राप्त हो रहा है वो एक अलग चीज हो गई। तो एक तो हो गया कि उनके माधुर्य का आस्वादन करना, और फिर माधुर्य के आस्वादन से जो उन्हें सुख की प्राप्ति हो रही है वो एक अलग चीज है। जैसे आप कोई शेक पी रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं, तो उसका जीभ पे आस्वादन करना एक अलग चीज है, लेकिन उस आस्वादन करते हुए आपको जो सुख मिल रहा है वो एक अलग चीज है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है, तो ये है वो सुख कैसा है वो ये लेना चाहती है। तो इसको महाप्रभु कृष्ण पूरा नहीं कर पाए ब्रज में, तो उन्होंने महाप्रभु के रूप में पूरा किया। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की, भगवान वामन आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, निताई गौ प्रेमानंदे।
हिलग्रेस भक्त मित्र प्रभु की।
दस मिनट बाकी।